हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल ही रामनवमी महामहोत्सव है। रामनवमी महामहोत्सव की भगवान श्री राम का कल प्राकट्य होगा दोपहर 12 बजे, और उसके उपलक्ष्य में पिछले कुछ दिनों से रामकथा का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में भगवान श्री राम का वर्णन है। तो आज हम भागवतम के 9वें स्कंध का 10वां अध्याय, जिसका नाम है परम भगवान रामचंद्र की लीलाएं, श्लोक संख्या 8 बोर्ड में है, और कुछ राम जी के चरित्र से कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। या सत्य पाशा परिवेपितो निदिशाम, या सत्य पाशा परिवेपित निदेशम, त्रैणस्य चापे शिरसा जग्रहे सभार्या, राज्यं श्रियं प्रयणा सुहृदो निवासम, त्यक्त्वा ययौ मन्मसुनीव मुक्तसंगा। या सत्यपाशा परिवेपितो निर्देशम, त्रैणस्य चापि शिरसा जग्रहे सभार्या, राज्यं श्रियं प्रणीना सुहृदो निवासम, त्यक्त्वा ययौ मन मसुनीव मुक्तसंगा। धन्यवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अपने पत्नी के वचनों से बंधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्त आत्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तात्पर्य, महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। इनमें से कैकेयी ने उनको अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर लिया था, अतः उन्होंने उसे वर देना चाहा था, किंतु कैकेयी ने कहा था कि उपयुक्त अवसर पर वह मांग लेगी। फलतः रामचंद्र जी के राज तिलक के अवसर पर कैकेयी ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र भरत को राजगद्दी और रामचंद्र को वनवास दे दें। वचनबद्ध होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी प्रियतमा के कहने पर रामचंद्र को जंगल जाने का आदेश दे दिया, और भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में तुरंत ही आदेश मान लिया। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना सर्वस्व त्याग दिया। जिस प्रकार कोई मुक्तात्मा या महान योगी बिना किसी भौतिक आकर्षण के अपना जीवन त्याग देता है। हरे कृष्णा। तो रामनवमी का कल उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, और शिला प्रभुपाद का कल हम लेक्चर सुन रहे थे श्री राम कथा पर ही, और प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब ये उत्सव आते हैं तो बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं कि हम भगवान का संग कर सके, राम जी का हम संग कर सकते हैं। कैसे संग कर सकते हैं? उनके बारे में सुनकर, भगवान के नाम और लीलाओं का वर्णन सुनना कानों के लिए उत्सव के समान है, कर्म उत्सव। शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग रोज कर्म उत्सव मनाते हैं, और श्री श्री राधा राधे कमन कृष्ण बलराम के दर्शन करके रोज नेत्र उत्सव मनाते हैं। तो ये भक्तों का जीवन है, प्रतिदिन उत्सव ही उत्सव है। और राम जी का जो राम जी अवतार लेते हैं, इसके पीछे विशेष अभिप्राय होते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नेति मामेति स अर्जुन। जो भगवान के जन्म और कर्मों के दिव्यों को दिव्यता को समझता है, उसके तत्व को जानता है, वो पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, वो भगवान के धाम चला जाता है। और ये मनुष्य जीवन इस तत्व को जानने के लिए ही मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमें तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वैसे तो भगवान समय समय पर कई तरह के अवतार लेते हैं, लेकिन विशेषकर राम अवतार और भगवान जब स्वयं कृष्ण रूप में आते हैं, इस पर एक विशेष आकर्षण है। कोई बता सकता है क्यों? हाँ, क्योंकि भगवान इसमें नरलीला करते हैं, और क्योंकि हम भी सब मनुष्य योनि में हैं, तो हम इन अवतारों में जो भगवान लीलाएं करते हैं, वो अपने हृदय के बिल्कुल समीप पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भगवान राम एक साधारण व्यक्ति तरह व्यवहार करते हैं, उनकी पत्नी है और माता है, पिता है, भाई हैं। और जब सीता माता का हरण हो जाता है तो भगवान राम विरह में ऐसे रोते हैं जैसे एक साधारण मनुष्य जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त हो। और भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करना है तो अपने आप को बिल्कुल असहाय पा रहे हैं। वो सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं, सुग्रीव कहाँ पे है, जब तक सुग्रीव मेरी मदद नहीं करेगा मैं सीता को कैसे प्राप्त करूंगा। उनका दुख बढ़ता जाता है और लक्ष्मण उनका उत्साह बढ़ाते हैं, नहीं राम ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह। तो उससे हम अपने भगवान राम की लीलाओं को बड़े समीप पाते हैं और इसलिए उसमें बहुत आनंद आता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं भागवतम के दशम स्कंध में, अनुग्रह भक्ताना मानुषम देहम आश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। अनुग्रह भक्ताना, अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए मानुषम देहम आश्रिता, भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा, उनकी इन लीलाओं को जब हम स्वीकार करते हैं या श्रुत्वा, जिनको सुनकर तत्परो भवे, हमें तुरंत भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो लीलाओं को सुनने का ये उद्देश्य है। और भगवान राम का अर्थ है जो कि आनंद के भंडार है, रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, सारे आनंद के भंडार। और इस संसार में प्रत्येक जीव आनंद की ही खोज में है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौनिताय की। भगवान राम आनंद के भंडार हैं और इस संसार में प्रत्येक जीव अलग अलग योनियों में आनंद की खोज में है। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ही है कर्मणा, प्रहलाद महाराज भागवतम के दशम स्कंध में बताते हैं कि हमारा सुख बढ़े और दुख से मुक्ति हो, हर व्यक्ति यही चाहता है। तो कोई पूछ सकता है कि हम सब आनंद की तलाश में क्यों हैं, और जो ये आनंद है ये संसार के सुख दुख से परे है, ये आनंद पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, एंटी मैटर है। तो इस आनंद के पीछे हम सब क्यों पड़े हैं, हम सबको आनंद क्यों चाहिए? हाँ जी, मूल स्वभाव है। हाँ, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान स्वयं आनंद घन है, स्वयं आनंद है और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सब आनंद की खोज में हमेशा रहते हैं। और इस आनंद का आधार क्या है? अक्सर जब हम लोग आनंद की खोज में होते हैं, कुछ अच्छा खाने को मिल जाए बोले वाह आनंद आ गया, कुछ अच्छा देखने को मिल जाए वाह आनंद आ गया, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए वाह आनंद आ गया। तो आनंद का आधार ये सब चीजें हैं क्या? आनंद का आधार क्या है? ये आनंद का आधार है प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान की सेवा। तभी हम बोलते हैं निताई गौर प्रेमानंदे, प्रेमानंदे। अगर प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं है, अगर आनंद है इसका मतलब प्रेम है, आनंद का आधार प्रेम है। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं यदि दादा ही धर्मस्य ग्लानोर भवति भारत। जब संसार में ये लोग भूल जाते हैं कि आनंद कैसे प्राप्त करना है, यानी कि तब मैं धर्म की स्थापना करना आता हूं। धर्म की सीधी परिभाषा है भगवान से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना सीखना, यह धर्म श्रील प्रभुपाद बताते हैं। ऐसा धर्म, धर्म का मतलब है जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाए, भगवान से प्रेम करना यानी कि जो हमें आनंद देना सिखाए, आनंद प्राप्त करना सिखाए। तो ये आनंद यानी जब देखते हैं संसार में लोग आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे तो भगवान अवतरित होते हैं और बताते हैं कि आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्रेम करके। और भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में आते हैं, हालांकि भगवान परम नियंता है, लेकिन अपने जीवन में वो ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, ऐसे विकट परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, और हर विकट परिस्थिति में मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए ये सिखाते हैं, कैसे एक मनुष्य को, एक सज्जन व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान राम अपने आचरण से सिखाते हैं। और अपने जीवन में हर तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं, हर परिस्थिति में एक सज्जन व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। आजकल काफी लोग, युवाओं को हम देखते हैं वो टी शर्ट डाल के घूमते हैं, उस पर लिखा होता है बीइंग ह्यूमन। तो केवल बीइंग ह्यूमन के टी शर्ट डालने से हम ह्यूमन बीइंग नहीं हो जाएंगे, बीइंग ह्यूमन से अच्छा है डूइंग ह्यूमन। केवल हम मनुष्य के कार्य करें, और मनुष्य के कार्य क्या है? धर्मेण हीना पशु भी समाना, मनुष्य को बुद्धि चेतना इसलिए विकसित दी गई है कि वो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करे। हर परिस्थिति में भगवान राम यही सिखाने आए हैं। हर परिस्थिति में धर्म का पालन करने का अर्थ है कि हर परिस्थिति में हमें भगवान से प्रेम करते रहने का प्रयास करना चाहिए। हर परिस्थिति में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भागवत में तीसरे स्कंद में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इन ऑल सर्कमस्टांसेस वन शुड ट्राई टू लव कृष्णा, दिस विल सॉल्व ऑल कंटेंडिंग प्रॉब्लम्स। हर परिस्थिति में हमें भगवान से प्रेम करना है। इससे क्या होगा, जीवन की जो हम जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आते हैं कि हम अपने परम पुरुषार्थ को भूल जाते हैं, प्रेमो पुमार्थो महान, उसको भूलकर जो अर्जेंट मैटर्स लगते हैं उसके चक्कर में इंपॉर्टेंट मैटर को भूल जाते हैं। पूरा जीवन अर्जेंसी में ही निकल जाता है, भाग दौड़ में। कभी बिल जमा करना है, कभी किश्त भरनी है, कभी किराए के मकान से निकाल दिया गया है, कभी पत्नी से झगड़ा हो गया, कभी पड़ोसी ने गाड़ी की हवा निकाल दी, कभी लेबर स्ट्राइक पे चला गया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बीमार पड़ गई, इसी में ही पूरा जीवन निकल जाता है। और बोला कि भगवान से प्रेम, अरे पूरा दिन निकल गया, सुबह हो गई, रात हो गई, इसी में ही चक्कर निकल में सारे इसी जीवन समस्याओं के चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है। और हमें बोला जा रहा है कि प्रेमो पुमार्थो महान, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना। क्या प्रेम होगा बताइए, बताइए बात सच है कि नहीं है? स्टूडेंट लाइफ में हो तो परीक्षा का डर और परीक्षा की तैयारियां, कंपटीशन, ये नौकरी करते हैं तो फिर कहीं निकाल ना दे इतना कंपटीशन, आगे प्रमोशन, पॉलिटिक्स, ये बिजनेस है तो बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, फिर घर के झगड़े, इतने सब कुछ में कहां मतलब कि भगवान से प्रेम करना कोई सीखेगा, प्रैक्टिकली नहीं लगता। तो भगवान राम ये सब सिखा रहे हैं आचरण करके, कि हर परिस्थिति में आएंगी आएंगी, कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूले ना। अगर हमें भगवान से ममता करनी है तो संसार से समता रखनी पड़ेगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम अपने जीवन के लक्ष्य पर हमेशा फोकस रहें, केंद्रित रहें। तो आज भगवान राम जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो भगवान राम अवतरित हुए थे हमें सिखाने के लिए, उसको हम सीख पाए। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो प्रारंभिक वर्षों में बैक टू गॉड एंड मैगजीन्स में उन्होंने श्रीमद भागवतम के लिए एक एडवर्टाइजमेंट डाली उनके शिष्यों ने, और एडवर्टाइजमेंट प्रभुपाद को दिखाई। उसमें लिखा प्रभुपाद के शिष्यों ने, अगर आपकी रुचि है एक ऐसे नॉवल पढ़ने में जिसमें बहुत ही रोमांच हो, बहुत ही सस्पेंस हो, बहुत ही हास्य हो, कॉमेडी हो, दुख हो, सुख हो, एकदम, तो आप उस नॉवल को पढ़ना चाहेंगे, तो वो नॉवल है श्रीमद भागवतम। इसी ढंग से रामायण एक ऐसा महाकाव्य है, ऐसा इतिहास है जिसमें सारे के सारे रसों का आस्वादन हम कर सकते हैं। एक राजा कैसे होने चाहिए, मंत्री कैसे होने चाहिए, पिता कैसे होने चाहिए, माँ कैसे होने चाहिए, भाई कैसे होने चाहिए, पत्नी कैसे होने चाहिए, सेवक कैसे होना चाहिए, सबके सब रसों का आस्वादन है। तभी आप देखिए लाखों 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 साल से रामकथा चल रही है, चली जा रही है, और कितनी बारी हम सुनते हैं फिर भी नया लगता है, कितनी बारी। जितने भी नॉवल्स हैं, जितने भी चलचित्र हैं, जितने भी ड्रामास हैं, सबके सब इसी के ऊपर आधारित हैं। एक अभिनेता, एक अभिनेत्री, एक खलनायक, है ना, यही है ना, अभिनेता, अभिनेत्री, खलनायक। पिक्चर में तो ज्यादा दी एंड, इसका कभी एंड ही नहीं है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, और इसमें नया आस्वादन, इससे मालूम चलता है ये दिव्य है, इससे मालूम चलता है ये दिव्यता। तो भगवान राम अवतरित होते हैं, दशरथ जी काफी वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं, हालांकि वो पूरे पृथ्वी के राजा हैं, और जैसे राजा यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा बहुत सुखी है और सबके सब आज्ञाकारी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मंत्री भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजा दशरथ बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं है। तो बहुत लंबी कथा है कि किस तरह से वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके चार पुत्रों की प्राप्ति होती है। ये चार पुत्र कौन कौन है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो राम है वो स्वयं वासुदेव हैं, और लक्ष्मण जी संकर्षण है, भरत प्रद्युम्न है, और शत्रुघ्न अनिरुद्ध है। भरत जी का रंग काला बताया गया है और राम का रंग क्या है, हरा, हरे की तरह। हम लोग यहां बैठे बैठे सोच नहीं सकते कि आध्यात्मिक का रंग कैसा होता होगा, हरा जैसा, भरत का रंग काले जैसा,
और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुनहरी रंग जैसे, है ना। और सब यही वर्णन आता है कि अगर राम जी नारायण हैं तो भरत जी क्या हैं, उनके शंख हैं, और शत्रुघ्न क्या हैं, उनके चक्र हैं, और लक्ष्मण जी शेष हैं। तो ये चारों भाई बहुत प्रेम करते थे और सारे के सारे अयोध्या वासी उनको बहुत प्रेम करते थे। क्योंकि क्यों प्रेम करते थे, क्योंकि भगवान राम स्वयं सबसे प्रेम करते थे। हम अक्सर यही चाहते हैं कि हाय कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मुझसे प्रेम करे। हर किसी को नहीं मिलता है यहां प्यार, क्या है खुश नसीब हैं वो जिनको मिलता है, और हर कोई ढूंढता रहता है कि वो प्रेम करने वाला मिल जाए, मिल जाए। एक से नहीं मिलता, दूसरे के बाद दूसरे से मिलता, तीसरे के बाद, बेचारा ढूंढता रहता है। लेकिन ये प्रेम की अभिलाषा तब पूरी होगी जब हम खुद प्रेम देना सीखेंगे। और प्रेम देना, प्रेम करना, यानी कि इसमें बहुत सेक्रीफाइस है, एक तरह से यज्ञ है। प्रेम का मतलब देना, लेना नहीं, हमें देना सीखना पड़ेगा। और प्रेम करने के लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए। अक्सर अक्सर देखा गया कि जब विवाह होता है पुरुष और स्त्री का, तो कमिटमेंट्स लेते हैं, कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं कि चाहे सुख हो दुख हो ये हो वो हो हम सब इकट्ठे रहेंगे। नहीं, वो सब लिप सर्विस होती है, कहने की बातें होती है। ज्यादातर तो रात को लेट होते हैं, नींद में ही होते हैं, जो बुलवा लो, जो फटाफट काम खत्म करो उसको निपटाओ। एक रिचुअल होता है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, फटाफट निपटा दिया। लेकिन ये प्रेम नहीं है, प्रेम में वास्तव में बहुत कमिटमेंट है। और प्रेम का मतलब ये भी नहीं है कि एक दूसरे को हम संतुष्ट करते रहें तो वो प्रेम है। श्रील प्रभुपाद परिभाषा देते हैं, प्रेम की असली परिभाषा ये है कि वातावरण में सारे के सारे प्रतिकूल परिस्थितियां हों और आंतरिक रूप से भी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हों, आपका अहंकार आपको तंग कर रहा है, आपका मन आपको तंग कर रहा है, हर विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए भी आप अपने प्रेमी को त्यागे ना, उसकी सेवा ना त्यागे। हर कारण हो सेवा त्यागने का, फिर भी आप सेवा नहीं त्याग रहे, वो प्रेम है। तो प्रेम का मतलब है देना। तो भगवान राम सारे अयोध्यावासियों से प्रेम करते थे और अयोध्यावासी भगवान राम से प्रेम करते थे। प्रेम ही प्रेम को आकर्षित करता है, लव अट्रैक्ट्स लव। वही हम अपना देख सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में दुर्भावना है, गलत विचार है, तो वो भी आपसे सही व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रति हम बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो हमारे प्रेम पूर्वक, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसकी भावना, गलत भावना भी बदल जाएगी। इस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं, अगर कोई आपसे द्वेष करता है तो उसका कत्ल कर दो, मार दो उसको, किससे, अपने प्रेम से। ऐसे शूट न करना आप उसको, अपने प्रेम से हम मार सकते हैं। यही एक वास्तव है इस संसार में, जितनी भी हमें कमियां नजर आ रही हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो सब कमियां हैं प्रेम ना पाने की अभिव्यक्ति है। प्रेम नहीं है, इसी का मैनिफेस्टेशन है, इसी की अभिव्यक्ति है कि संसार में हमें इतनी कमियां नजर आती हैं। तो भगवान राम सभी अयोध्यावासियों से प्रेम करते थे और सभी अयोध्यावासी भगवान राम से प्रेम करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और सबके सर्वसम्मति के अनुसार ये निश्चित किया गया कि भगवान राम को अब युवराज बनाया जाएगा। अगले ही दिन भगवान राम को युवराज बनाना है और तभी भगवान ने अपनी लीला शक्ति से मंथरा नामक एक दासी के हृदय में द्वेष डाल दिया, उसको एम्पावर कर दिया कि वो उनसे द्वेष करे। कोई अयोध्यावासी में कोई द्वेष कर ही नहीं सकता था, ये तो भगवान की लीला शक्ति के कारण ही संभव होगा। तो भगवान ने अपनी लीला शक्ति से मंथरा के हृदय में द्वेष उत्पन्न कर दिया और जहां द्वेष आ जाता है वहां हमारे सारे के सारे सद्गुण समाप्त हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। जहां द्वेष आ जाता है मित्र भी शत्रु बन जाता है और जहां द्वेष आ जाता है हमारा दृष्टिकोण इतना संकीर्ण हो जाता है कि हम पूरे संसार के बारे में भूल जाते हैं। द्वेषी व्यक्ति केवल सेल्फिश होता है, वे केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। तो मंत्रा ने कैकेयी को बताया, अरे मूर्ख स्त्री, तू बिल्कुल मूर्ख है, तू इतनी प्रसन्न है, खुशियां मना रही है कि कल तेरे पुत्र राम का अभिषेक होगा। अरे राम का अभिषेक हो गया तो भरत की क्या स्थिति होगी और तुम्हारी क्या स्थिति होगी, कौशल्या तो राजरानी बन जाएगी और तुम दासी बन जाओगी और मेरी क्या हालत होगी। तो जब ये बात कैकेयी ने सुनी, बात तो ठीक है, भरत को क्यों नहीं बनाया जा रहा युवराज, क्योंकि राम भरत से ईर्ष्या करते हैं। तो अभी भी समय है, दशरथ के पास जाओ, उन दो वरदानों को मांगो, राम को राज्य से बाहर करवाओ, भरत को युवराज बनाओ। केकई ने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, तुम मेरी असली मित्र हो, सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। तो केकई क्या करती है, एक पुराने से कपड़े डालकर अपने वस्त्र अपने बाल खोलकर कोप भवन में चली जाती है। पहले राजे महलों में एक कोप भवन हुआ करता था, जब पत्नी को शोक करना होता था, उसका मूड ऑफ होता था, तो कूप भवन में चले जाते थे। आजकल तो पूरा का पूरा MIG LIG फ्लैट ही कूप भवन है। ड्राइंग रूम हो या डाइनिंग रूम हो या कोई किचन हो, कूप भवन हमेशा झगड़ा लड़ाई। तो दशरथ जी इस तरह उनको केकई से बहुत प्रेम था, तीन रानियों में केकई से बहुत ज्यादा प्रेम था। तो दशरथ जी जाते हैं डरते डरते, क्योंकि केकई का बहुत क्रोध में है। दशरथ जी उनको पहले मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन केकई अपना गुस्सा और बढ़ाती जाती है। और फिर वो बताते हैं कि अब वो समय आ गया, याद है युद्ध के समय मैंने तुम्हारी सहायता की थी और आपने कहा था कि तुम दो बार मांग सकती हो, अब वो समय आ गया है। तो दशरथ रघुकुल के थे, उन्होंने बोला निश्चित रूप से मैं अपने वचन पर अडिग रहूंगा। तो फिर केकई ने वो वर मांगे, क्या पहला वर, कि मेरे पुत्र भरत को युवराज बनाया जाए। ये सुनकर दशरथ को अच्छा नहीं लगा, बोला अगला, बोला राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ के जैसे प्राण निकल गए हों, वो बिल्कुल पृथ्वी पर गिर गए और बोले अरे उल्टा ऐसा वर क्यों मांगा तुमने, तुम्हें राम से क्या द्वेष है? बोले नहीं, भरत को युवराज बनाना है और राम को बाहर निकालना है। और फिर राम को बुलाया गया, भगवान राम जहां पे जब आए तो देखा कि दशरथ जी लगभग अचेत अवस्था में है, और केके के पास गए कि मुझे क्यों बुलाया गया। तो केके ने बोला कि तुम्हारे पिता कुछ कहना चाहते हैं लेकिन भय और संकोच के कारण वो कह नहीं पा रहे। तो राम जी ने बोला मुझे आदेश देने के लिए पिता को भय और संकोच हो रहा है, ये मेरी लज्जा की बात है, कृपया करें कहिए मुझे क्या आ गया है। तो फिर केकई ने ये दो वर दोहराए। तो क्या भगवान राम का क्या इसके प्रति रिएक्शन था, ओफ ऐसा किया भगवान राम ने, इस श्लोक में क्या बताया गया। भगवान राम ने उसी तरह अपना राज्य ऐश्वर्य शुभ चिंतक निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपने जीवन को त्याग देता है। भगवान ने बोला निसंकोच, इसमें क्या बात है, मैं तुरंत चला जाता हूं, अवश्य ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और अगर ये कहना ही था, अगर ये इच्छा थी तो आपने पिताजी को बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप सीधा मुझे बताते मैं चला जाता। और इसके बाद भगवान राम ने केकई और दशरथ के पांव छुए और बाहर निकल गए। बाहर द्वार पर लक्ष्मण खड़े थे, जब लक्ष्मण ने यह सुना तो उनको बहुत क्रोध आया, लेकिन भगवान राम ने उनको शांत कर दिया। फिर भगवान राम कौशल्या माता के पास जाते हैं और उनको ये समाचार सुनाते हैं। कौशल्या माता भी इसको सहन नहीं कर पाते और कौशल्या माता भी बहुत विलाप करती हैं। जब कौशल्या माता का विलाप लक्ष्मण सुनते हैं, अब उनसे रोका नहीं जाता, बोले हमारे पिताजी कामवश हो गए, काम वास्ताओं के वश में आकर उन्होंने एक द्वेषी स्त्री के कहने को माना है, हम नहीं मानेंगे, सारी की सारी सेना तुम्हारे साथ है, सारे मंत्री तुम्हारे साथ हैं, सारे अयोध्यावासी तुमसे प्रेम करते हैं, अभी जाओ और दशरथ को हम राज सिंहासन से हटा के हम तुम्हें बैठाते हैं। आज के समय में यही तो होता है, शाहजहां ने जहांगीर को किया, औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाला था, और उनको तो जनता का सपोर्ट भी नहीं था, सारे सारे अयोध्यावासी राम से प्रेम करते थे और दशरथ बहुत वृद्ध अवस्था में थे, बहुत दुर्बल थे। अगर भगवान राम चुपचाप कहते पिताजी आप वृद्ध हो गए साइड में हो जाइए बैठे, किसी को कोई समस्या नहीं होती, और लक्ष्मण उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम ने बोला नहीं शांत लक्ष्मण ऐसा नहीं, हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है। कौशल्या माता इतनी वृद्ध अवस्था में थी, कहती मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो भगवान राम कहते नहीं, जब मैं यहां नहीं होऊंगा दशरथ को बहुत दुख होगा, पिताजी को बहुत दुख होगा, तो आप कृपया करके यहां रहिए। देखिए ऐसी अवस्था में भी भगवान अपने पिता के सुख के बारे में सोच रहे हैं। और फिर वो सीता मैया के पास जाते हैं बताने के लिए, तो सीता माता कहती मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने बोला ये संभव कैसे है, तुम एक राजकुमारी हो, नंगे पैर चलना पड़ेगा, और इतना सर्दी गर्मी बरसात, और साथ में केकई ने बोला था 14 वर्ष बाहर जाओगे अच्छे वस्त्र ये नहीं डालने पड़ेंगे, क्या डालना पड़ेगा, पेड़ों की छाल, वृक्षों की छाल डालनी पड़ेगी, नंगे पांव चलना पड़ेगा, किसी भवन में नहीं रहना पड़ेगा, पृथ्वी पर सोना पड़ेगा, तो ये सारी तपस्या तुम कैसे करोगे? और पशु होंगे, जंगली पशु होंगे, कई तरह के असुर होंगे, तो मैं कैसे तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा? सीता माता ने बोला कि आपके विरह में अगर मैं नरक में भी रहूं, स्वर्ग में भी रहूं, उससे अच्छा है कि नरक में मैं आपके साथ रहूं, तो मैं आपके बिना सोच भी नहीं सकती मेरा जीवन कैसे बीतेगा। तो सीता माता को दृढ़ता को देखकर सीता माता भी उनके साथ चले जाते हैं। और फिर जब इसके बाद जब भरत वापस आते हैं, क्योंकि राम ने स्वयं बोला कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं अब भरत, क्योंकि भरत उसमें वहां नहीं थे, तो अभी हम राजदूत भेजकर भरत को बुलाते हैं, तो कह के बहुत प्रसन्न हो गई, भरत को तुरंत बुलाया गया। और जब भगवान राम चले जाते हैं तो दशरथ विरह के कारण वहीं प्राण त्याग देते हैं। और फिर बाद में भरत वहां पर आते हैं, तो जब भरत वहां आते हैं देखते हैं पूरा पूरा अयोध्या नगरी में शोक छाया हुआ है, सबके सब बहुत दुखी हैं, ऐसा होता नहीं था। हम लोग तो बोले तो बड़ी कॉमन बात है, दिल्ली में सब लोग दुखी दिखाई देते हैं ना, सबके चेहरे लटके हुए परेशान क्रोधित, ये दिल्ली के लक्षण है, अयोध्या के उस समय के लक्षण नहीं थे। तो भरत को आकर लगे बहुत परेशानी, क्योंकि यहां पर दिल्ली में कोई मुस्कुराता चेहरा मिल जाए तो हम बोलते हैं इतने खुश क्यों हो, तो वहां अयोध्या में लोग दुखी थे, तो भरत परेशान हो रहे थे कि लोग दुखी क्यों हैं। तो भरत ने पूछा समस्या क्या है, जब भरत कैकेयी के पास गए तो कैकेयी केवल एक प्रसन्न थी पूरे अयोध्या में। कैकेयी ने बोला भरत मैंने कर दिखाया मैंने। बोले क्या कर दिखाया? बोले अब तुम राजा बनोगे। राजा बनेंगे क्यों, ये तो राम का अभिषेक होना था। बोले नहीं, राम को हमने वनवास भेज दिया है। जब ये भरत ने सुना तो भरत ने क्या बोला, ये नहीं बोला धन्यवाद माता तुमने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया। भरत ने बोला आज से तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरी मां नहीं हो। फिर जब उनको मालूम चला कि राम के विरह में ही दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं, तो भरत को बहुत शोक हुआ। भरत ने जब अंतिम संस्कार किया तो विशिष्ट जो कि कुलगुरु थे वो भरत के पास आए, बोले कि अब अयोध्या के कोई राजा नहीं है तो मैं राजा बनना पड़ेगा। भरत ने बोला प्रश्न ही नहीं उठता, असंभव, मैं राज सिंहासन पर बैठ ही नहीं सकता, ये केवल राम का है, मैं तो हमेशा दास ही रहूंगा। हम अभी चलते हैं, कौशल्या माता को लेकर, सुमित्रा माता को लेकर, आप सब ऋषिगण चलिए, और सारे सारे अयोध्यावासी चलते हैं, राम को वापस बुला के लाएंगे। जब ये सब सुना तो सब अयोध्यावासी बहुत प्रसन्नचित हो गए, बोले ठीक है सब चलेंगे। फिर उनको लगभग एक माह लगा एक सड़क बनाने के लिए, उसके बाद सबके सब चले। जब गए तो सबसे पहले उनकी भेंट होती है निषाद राज गुहा से, तो गुहा जो थे उन्होंने, राम जी भी उनके पास आए थे, और जब राम जी की स्थिति को देखकर कि उन्होंने अपने बालों को जटाओं के रूप में धारण किया हुआ है, वृक्ष की छाल डाली हुई है, नंगे पांव चल रहे हैं, तो गुहा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला कि मेरा भवन है, इसमें आके कृपया करके विश्राम कीजिए। तो भगवान राम ने बोला नहीं, पिता को वचन दिया है मैं भवन में नहीं प्रवेश करूंगा, मैं नीचे पृथ्वी पर ही सोऊंगा। गुहा ने बोला ये वृक्ष की छाल उतारिए, अच्छे वस्त्र डालिए। बोले ये भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वो अच्छे अच्छे व्यंजन बना के लाया, बोले नहीं मैं केवल कंदमूल स्वीकार करूंगा। तो गुहा से देखा नहीं गया। हम देख सकते हैं ये भगवान राम का चरित्र है, हर परिस्थिति में उन्होंने जो अपने माता पिता को वचन दिया था वो उसको पूरा करते रहे। तो जब गुहा ने देखा कि भरत इतनी सेना के साथ आ रहे हैं तो उनको संदेह हो गया कि अभी भी ये संतुष्ट नहीं हुआ, इसके मन में ये संदेह है कि 14 वर्ष के बाद राम आके दोबारा इन पे आक्रमण कर देगा, अभी आया है राम को बिल्कुल समाप्त करने के लिए। तो गुहा को भी बड़ा संदेह हो गया, बोले अब क्यों आए हो, अब और क्या चाहते हो? तो भगवान भरत जी ने बोला कृपया करें हमारी सहायता कीजिए, भगवान राम कहां है? तो गुहा ने बोला चलो भगवान राम प्रयाग की तरफ गए हैं। तो वो लोग प्रयाग में जाते हैं गंगा जी पार करके, तो जब प्रयाग में जाते हैं तो वहां वो मिलते हैं भारद्वाज ऋषि से। तो भारद्वाज ऋषि को भगवान राम ने बहुत प्रणाम किया था, उनकी सेवा की थी, क्योंकि वो बहुत बड़े संत हैं। तो भारद्वाज मुनि भी भरत से कहते हैं कि तुम फिर से आ गए, अब तुम क्या चाहते हो, भगवान राम पर आक्रमण करना चाहते हो अपनी सेना के साथ? तो भरत बेचारे पृथ्वी पर गिर पड़े, बोले हर कोई मुझे गलत क्यों समझ रहा है, मैं भगवान राम को वापस लेने आया हूं। तो भारद्वाज मुनि कहते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अभी भगवान राम सीता माता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के पर्वत पे हैं। तो फिर लक्ष्मण जी सभी सेना के साथ चित्रकूट की तरफ चलते हैं। चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने सीता और राम जी के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई होती है। जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो सुमित्रा माता लक्ष्मण को ये आज्ञा देती है कि 14 वर्ष तक तुमने सीता और राम की रक्षा करनी है, 14 वर्ष तक तुम एक प्रहरी के रूप में रहोगे और बिल्कुल भी आप विश्राम नहीं कर सकते। 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं थे, ये देखिए, उनको कोई ये नहीं मिला था कि वो वनवास करें, लेकिन 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं अपने भाई के प्रेम के वश के कारण। तो लक्ष्मण जी ने एक झोंपड़ी बनाई, उस झोंपड़ी के बाहर भगवान राम का धनुष, उनके तीर लटके हुए थे, कुछ तलवार और कुछ छाल लटकी हुई थी और लक्ष्मण खड़े थे। और इसके बाद सीता और राम वहीं पे मंदाकिनी नदी भी बह रही थी और मंदाकिनी नदी के तट पर काफी साधुगण वहां पर तपस्या करते थे। भगवान राम सीता से कहते हैं कि हे देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूं और इतनी प्रसन्नता मुझे अपने जीवन में कभी नहीं मिले। सीता माता पूछते हैं इसका क्या कारण है। कहते, जब मैं अयोध्या में था पूरे राज्य का बोझा मेरे कंधों पर था, वो भी ठीक था, लेकिन अब ऐसा कोई बोझा नहीं है। सुंदर वातावरण है, मंदाकिनी नदी है, साथ में तुम हो, और सबसे अच्छी बात है ये सब ऋषिगण हैं, इनका हमें संग प्राप्त हो रहा है। स्वयं भगवान राम और लक्ष्मी समान सीता माता इन सब ऋषिगणों की छोटी से छोटी सेवा करते थे और छोटी से छोटी मिनियल सर्विस करके इनको बहुत आनंद प्राप्त होता था। तो हम देख सकते हैं जो आनंद की स्थिति है ये भौतिक सुविधाओं पर निर्भर नहीं करते। भगवान राम साधु संग प्राप्त करके प्रफुल्लित हो रहे थे, बोले इतना आनंद मुझे कभी नहीं मिला। और स्वयं सीता माता जो कि लक्ष्मी देवी हैं और भगवान राम जो कि माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो साधु संतों की मिनियल सेवा, छोटी छोटी सेवा करके बहुत संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके बाद जब ये वार्तालाप चल रही थी तभी उनको आवाज आती है कुछ रथ के चलने की, घोड़ों की। तो बोले किनकी आवाज है, तो लक्ष्मण पर्वत पे चढ़कर देखते हैं, तो देखते हैं दूर से लगभग घोड़े हाथी, 9000 हाथी थे, 60000 घोड़े थे, 1,00,000 सैनिक, इतना बड़ा कारवां कहां से आ रहा है। तो उन्होंने देखा आगे, क्योंकि जिस रथ पर चिन्ह देखा वो भरत का रथ था, उसके भरत के 12 घोड़े थे। तो लक्ष्मण को बहुत क्रोध आ गया, इसका मतलब भरत सेना के साथ राम पर आक्रमण करने आए हैं। तो उन्होंने बोला भरत आ रहा है हम पर आक्रमण करने के लिए, और लक्ष्मण के अंदर इतना क्रोध था क्योंकि वो स्वयं बलराम जी हैं, उनकी आंखों से इतनी अग्नि निकल रही थी जैसे कि पूरी सेना को जला सकते हैं। तो राम ने बोला, लक्ष्मण तुम बहुत गलती कर रहे हो। राम ने लक्ष्मण को डांटा, कभी भी ये मत सोचना कि भरत तुमसे भी ज्यादा कम प्रेम करता है। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना ही प्रेम भरत मुझसे करता है। भरत के हृदय में कोई गलत भावना नहीं है, उसको आने दो, भरत आ रहा है मुझे वापस ले जाने के लिए। और जब भरत देखते हैं कि कुछ ही दूर में भगवान राम की झोंपड़ी है बनाई हुई है, तो भरत रुक जाते हैं, अपने रथ से नीचे उतरते हैं और पैदल चलना शुरू करते हैं। उनके साथ शत्रुघ्न और आगे राजा गुहिया और पीछे वशिष्ठ मुनि और फिर उनकी माताएं और फिर सारे सैनिक। हालांकि पृथ्वी समतल है लेकिन भरत भावेश दौड़ रहे हैं, तो बार बार गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते भगवान के राम के पास पहुंचते हैं। और जब भगवान राम की हालत देखते हैं, भगवान राम पृथ्वी पर बैठे हैं, जटाएं धारण की हुई हैं, वृक्ष के छाल के वस्त्र डाले हुए हैं, तो भरत से देखा नहीं जाता कि भगवान राम की यह स्थिति है और सीता माता की भी यह स्थिति है। तो भरत मूर्छित हो जाते हैं और फिर भगवान राम उनको उठाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और अश्रुधारा से भगवान राम भरत का अभिषेक करते हैं। आप में से कुछ लोग अभी चित्रकूट में गए होंगे, कितने भक्त लोग चित्रकूट में गए हैं? तो हम तो नहीं गए, वहां बताया जाता है कि चित्रकूट में अभी भी वो पर्वत है जहां पे भगवान राम और भरत का मिलन हुआ था, और इतने भावावेश हुए थे कि वहां की जो चट्टान थी वो पिघल गई थी और वहां पे अभी भी भगवान राम और भरत के चरण चिन्ह हैं। तो ये भरत मिलाप होता है और उसके बाद भगवान पूछते हैं कि तुम यहां क्यों आए और इतनी बड़ी सेना लेके आए। मुझे अपने पिता के हाथी तो दिखाई दे रहे हैं, पिताजी कहां हैं? तो भरत रोते रोते बोलते हैं कि पिताजी का निधन हो गया है। जब ये बात भगवान राम सुनते हैं तो भगवान जोर जोर से विलाप करते हैं, जोर जोर से रोते हैं, रोते रोते सीता माता के पास जाते हैं कि अब तुम्हारे ससुर नहीं रहे, रोते रोते लक्ष्मण को गले लगाते हैं कि अब तुम अनाथ हो गए हो, और जब लक्ष्मण और सीता भी ये सुनते हैं तो पृथ्वी पर लेटते हैं और जोर जोर से विलाप करते हैं। अब कोई कह सकता है ये कैसे भगवान है, पिताजी चले गए और रो रहे हैं। यही भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, अशोचान अशोचस्तुम प्रज्ञा वादांश भाष से गतासुन गतासुंश नानु शोचंती पंडिता। स्वयं ये उपदेश देते हैं और ये शरीर तो जाना ही है और दशरथ जी की मृत्यु हो गई ऐसा विलाप कर रहे हैं। क्या कहना आपका, कृष्ण ने उपदेश दिया और राम उस उपदेश को भूल गए? क्यों कर रहे थे भगवान विलाप? एक्टिंग कर रहे थे? क्यों रो रहे थे भगवान वास्तव में? हाँ
It's a question of play acting.
So, Maharaj बता रहे हैं कि वो एक चल चरित्र की तरह उसको दिखा रहे थे।
तो आचार्यगण बताते हैं, थैंक यू महाराज, कि वास्तव में भगवान राम हमें दिखा रहे हैं कि भगवान और भक्तों के बीच में कैसे प्रेममय संबंध है। भगवान राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से उनको एक्सटेसी महसूस हो रही है, आध्यात्मिक आनंद अनुभव हो रहा है। जैसे आगे भी देखेंगे, जब सीता का हरण होता है तब भी भगवान विरह की अग्नि में जल रहे हैं और रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भौतिक जगत में व्यक्ति बाहर से हंसता है और अंदर से रोता है, आध्यात्मिक जगत में गोपियां भगवान भक्त विलाप करते हैं लेकिन अंदर से आनंद की अनुभूति करते हैं, बिल्कुल उल्टा है। और भगवान हमेशा आनंद ही रहते हैं, भगवान में कोई द्वंद नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, परम है, यानी कि कभी दुखी कभी सुखी, भगवान हमेशा ही आनंद में है। और अपने भक्तों से जब विरह का अनुभव करते हैं तो आंतरिक रूप से आनंद और बढ़ता है। हम लोगों के लिए बातें बिल्कुल अचिंत्य हैं, क्योंकि हम सोचते हैं आनंद का मतलब है पाना, ग्रहण करना, है ना। अगर मेरे को कुछ मिलेगा, मैं कुछ पाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, नहीं, वास्तव आनंद मिलता है देने से। पाने से मेरे दुख की निवृत्ति हो सकती है, हाँ मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे कुछ धन चाहिए तो मेरे कुछ दुख का निपटारा हो जाएगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, आनंद देने से मिलता है। और अभी भगवान अपने भक्त के विरह में हैं तो उनको ये वो विलाप कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भी क्रोध है, आध्यात्मिक जगत में भी आलाप है, रोना है, क्योंकि ये प्रेम के लक्षण है। आध्यात्मिक जगत कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इमोशंस नहीं है, सूना है, ड्राई है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत का मतलब कि वहां रोना धोना नहीं होगा, एकदम शांति, शांति नहीं, इमोशंस है वहां पे भी, है ना, पूरे इमोशंस, लेकिन प्रेम असली प्रेम के है। यहां पे क्या होता है, अगर पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, कुछ सालों के बाद व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है। अगर भगवान राम सीता से कह रहे हैं, सीता बोली 14 वर्ष के लिए मैं जनक जी के पास चले जाती हूँ, लेट्स सी, आप वापिस आके चेक कर लेना, मैं हूं भी नहीं आपके लिए, नहीं हूं, ऐसा नहीं, विल स्टे इन टच, बातचीत करते रहेंगे, तो मेरे लिए कोई समस्या, मैं नहीं सोचा है 14 वर्ष के लिए बनवास, और सीता माता कहती मैं भी चलूंगी, संभव ही नहीं आपके बिना जीना। तो इस भौतिक जगत में रिश्ते बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं, वास्तव में जो असली रिश्ते असली प्रेम वो आध्यात्मिक जगत में है। तो भगवान राम हमें दिखा रहे हैं कि एक भगवान भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं। भगवान बच्चों की तरह विलख विलख के रो रहे हैं, ये रोना कोई एक्टिंग नहीं है, ये वास्तव में उनकी भावनाएं हैं, और जितना वो विरह अनुभव कर रहे हैं उतना उतना आनंद उनका बढ़ रहा है। फिर भगवान स्वयं अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद पूरी शांति। फिर भरत हिम्मत करके भगवान से बोलते हैं, देखिए अब बहुत हो गया, रोते हुए कांपते हुए भरत बोलते हैं, सारे अयोध्यावासी चाहते हैं कृपया करके अब आप वापस चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान अपने पिता को दिए वचन को पूरा करना है तो वचन आपने पूरा कर दिया, कैकेयी की इच्छा के अनुसार मैं राजा बन गया, अब मैं राजा बन गया हूं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और मैं राजा होने के नाते आपको बोल रहा हूं कि आप अयोध्या वापस चलिए। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। भगवान राम कहते हैं, देखिए भगवान राम कहते हैं, देखिए कि संसार में ऐसी बहुत सी घटनाएं होते हैं जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, पर हम नियंत्रण भगवान ऐसी बात कर रहे हैं। हर सुख के साथ दुख है, हर मिलन के साथ विरह है, हर लाभ के साथ हानि है। तो भरत इन सब में जीना सीखो। मैंने अपने पिता को वचन दिया है, मुझे अपना वचन पूरा करने दो। भरत कहते हैं कैसा वचन? उन्होंने जब पिताजी ने कहा था काम वश, एक स्त्री थे, एक स्त्री के वश में आकर ये बातें कही, और मोहवश कोई बात कर दे और उससे पूरा अयोध्या दुखी हो, ये कहां की बात है? कैसा तर्क है? आपको चलिए, सारे अयोध्या वासी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान राम उनको बोलते हैं कृपया करके मुझे अपना वचन पूरा करने दीजिए, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं चरित्रहीन कहलाऊंगा। तो जब ये बातें चल रही थी तो वशिष्ठ मुनि देख रहे थे कि ये भरत डिबेट हार रहे हैं, वाद विवाद में भरत हार गए हैं। तो वशिष्ठ मुनि आते हैं, देखो राम, मैं तो तुम्हारा कुल गुरु हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी स्थिति तुम्हारे पिता से भी ज्यादा ऊंची है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं चलो अयोध्या वापस। वशिष्ठ मुनि देखते आप क्या बोलेंगे राम। राम कहते हैं बिल्कुल आपने जो बोला सत्य बोला, लेकिन कुल गुरु ये बताइए, जब मैं छोटा बच्चा था किसने मेरी देखभाल की थी? मुझे पूरी रक्षा प्रदान की थी मेरे माता और पिता ने, तो क्या मेरे उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? तो ये जब बात सुनी तो विष्णु मुनि बोले थे चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो अब किसी के पास कोई भी उत्तर नहीं है कि भगवान राम को हम वो वापस ला सके। तो ये जब बातचीत चल रही थी तो देवतागण बड़े चिंतित थे, देवतागण देख रहे थे क्या हो रहा है। तो देवताओं की क्या इच्छा थी, भगवान राम वापस जाएं कि ना जाएं? क्यों? रावण देखिए ये है सकाम भक्त ना, उनको अपनी चिंता लगी हुई है, वो रावण से इतना डरते थे, भैया जो मर्जी हो जाए, ये वो सेंटिमेंटल नहीं हुए, उनके कोई आंसू नहीं भाई क्या हो रहा है, वो ये चिंतित जाओ भाई रहने दो भरत, आगे रावण की हत्या करनी है, हम रावण ने बहुत दुखी कर रखे हैं हमें। तो देवता को नहीं प्रार्थना कर रहे थे, वो भरत के पास जाए बोल उनको रहने दीजिए ना यहाँ पे। तो क्यों भगवान ने बोला कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है, कैकेयी माता ने जो बोला इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोजन है, तो हमें इसके चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भी घटना घटती है हमें इसे विधाता का प्रयोजन मान लेना चाहिए, हमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं करने चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अगर हम इस हमारे जीवन में हो रही घटनाओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम नास्तिक हैं, क्योंकि हर चीज के परम नियंता स्वयं भगवान है, और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब हमें कृष्ण के अरेंजमेंट से पूरा विश्वास नहीं है। इसलिए बताते हैं आचार्यगण कि हम अपने आसपास के वातावरण से ना जूझें, वातावरण हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस वातावरण के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया है वो हमारे नियंत्रण में है। रिस्पॉन्स के प्रति, स्टिमुलस के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में है। तो वातावरण अक्सर हम लोग इसी चिंता में रहते हैं कि वातावरण को बदल दें, वातावरण को ना बदलें, वातावरण के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है उसको हम देखें कि वो धर्म के अनुसार है कि नहीं है। तो ये सब जब बातें हो गई तो भरत के पास और कोई चारा नहीं रहा, तो भरत ने फिर बहुत सुंदर लकड़ी के जो खटाव लाए थे खड़ा वो निकाले, उसपे अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात लगे हुए थे। भरत ने बोला कि मैं तो ये सोचकर आया था कि आप राज्य वापस चलेंगे, इसके लिए आपके लिए खड़ाव लाया था, लेकिन अब आप वापस नहीं जा रहे, कृपया करके अपने पांव इस पे रखिए और ये खड़ाव मुझे दीजिए, अगर आप राज्य नहीं करेंगे तो खड़ाव आपके राज्य करेंगे, मैं तो कभी राजा बनूंगा नहीं, अयोध्या के राजा ये खड़ाव होंगे। तो भगवान राम ने अपने पैर खड़ाव पे रखे और वो खड़ाव भरत ने अपने सिर पर रखे और वो फिर वापस अयोध्या आए। और भरत ने बोला कि जब तक 14 वर्ष तक आप वन में निवास करेंगे मैं भी वन में निवास करूंगा, 14 वर्ष तक आप वृक्ष की छाल डालेंगे तो मैं भी वृक्ष की छाल डालूंगा, 14 वर्ष तक आप केवल कंदमूल खाएंगे तो मैं भी केवल कंदमूल ही खाऊंगा, 14 वर्ष तक आप पृथ्वी पर सोएंगे तो मैं भी पृथ्वी पर ही सोऊंगा। ये बताया जाता है कि भरत बल्कि पृथ्वी पर ही नहीं सोते थे, पृथ्वी से वे नीचे खाई बनाकर उससे सोते थे, क्योंकि भगवान राम अगर पृथ्वी पर सो रहे हैं तो मैं उनके समान तल पर कैसे सो सकता हूं, मैं उनके नीचे ही सोऊंगा। तो भगवान राम और लेकिन वन में रहकर वृक्ष की खाल डालकर कंदमूल खाते हुए भी मैं पूरे राज्य का संचालन करूंगा एक सेवक के रूप में, लेकिन इस राज्य के अयोध्या के जो असली राजा हैं ये खड़ाऊ हैं। देखिए आप ये जो सिद्धांत है हम सबको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अभी तक इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो कि वन में रहकर वृक्ष की छाल डालकर जिसने राज्य का संचालन किया हो, और भरत ने बहुत अच्छे ढंग से राज्य का संचालन किया। किसी भी देश के राजा बनने के लिए एक स्थिति चाहिए होती है, पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सैनिक चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन भरत ने बोला कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई पावर नहीं चाहिए, कोई सैनिक नहीं चाहिए, एक सेवक के रूप में मैं पूरे राज्य का संचालन करूंगा। और भरत जी क्या करते थे, राज्य का संचालन करते थे और प्रतिदिन आकर भगवान की पादुकाओं को नमस्कार करते थे, उनको रिपोर्ट देते थे और बोलते थे कि अब मेरे लिए अगली आज्ञा क्या है। लोग बोलते थे कि आप तो बहुत अच्छा राज्य संभाल रहे हो, बोले नहीं, ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये सारा इन पादुकाओं का है, भगवान राम की पादुकाओं का। बहुत सुंदर संदेश हमें इससे मिलता है। हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के भावनात्मक आंदोलन में जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में, और आते ही हमें कुछ सेवा मिलती है, क्योंकि ये एक सोसाइटी है तो सेवा के साथ साथ हमें एक पदवी भी मिल जाती है, इंचार्ज आगे लग जाता है, हम इस सेवा के इंचार्ज हैं, लीडर हैं, इंचार्ज हैं, एक पदवी अवश्य मिलती है और उस पदवी के साथ कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। होता क्या है कि हम सेवा सही भावना में ना करके इन पदवियों से, इन सुविधाओं से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं और हम सोचते हैं इस पदवी के, इन सुविधाओं के, इस प्रतिष्ठा के बिना सेवा संभव ही नहीं है, और फिर सारा चक्कर इसी में फंस जाते हैं और जो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है उससे बहुत दूर हो जाते हैं। भरत जी ने कोई सुविधा नहीं ली, कोई पावर नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सेवा करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह भाव सिखाया है, दास दासानुदास। तो इस ढंग से भरत महाराज पूरी निष्ठा के साथ सेवा में जुड़े रहे। हम लोग भी कह सकते हैं नहीं नहीं, युक्त वैराग्य सेवा के लिए चाहिए ही होता है, ये सारी सुविधाएं ले लो अभी, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो अभी रिजाइन करने को तैयार हूं, ले लो। कहना आसान होता है, कौन व्यक्ति अपनी सेवा में कितना सिंसियर है इसकी टेस्टिंग क्या होती है जब उसे सारी की सारी सुविधाएं, सारा सारा पद छीन लिया जाए और उसके बाद ही वो सेवा करता रहे, तो यह असली सिंसियरिटी। हम लोग सोचते हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना पदवी के, बिना सुविधाओं के भी हमारा कुछ जीवन है, भयभीत हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में इन सब के बिना भी अगर हम कुछ सेवा कर सके तो वो असली हमारी भगवान के प्रति प्रेम करने की इच्छा है। तो भरत जी सेवा में जुड़े रहे, राज्य का संचालन किया और सारा का सारा क्रेडिट पादुकाओं को दिया। किसी भी सफलता का क्रेडिट अगर हम अपने पास रख लेंगे तो वो जहर का काम करता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तभी हम हमेशा बोलते हैं ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। ये केवल कहने के लिए नहीं है, जब शुरू शुरू में भक्त आते हैं तो उनको पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, ऑल ग्लोरीज क्या है, हो क्या रहे हैं, क्या ग्लोरीज ग्लोरीज, क्या ग्लोरीज क्या है, पता नहीं चलता। इसका मतलब है सब कुछ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ इनकी कृपा के कारण है। ऑल ग्लोरीज मीन्स ऑल ग्लोरीज, ऑल ऑल 100%। ये नहीं कि थोड़ा बहुत कमीशन, थोड़ा बहुत मैंने भी तो प्रयास किया। हम चाहते हैं कि लोग हमें आदर दें क्योंकि मैंने ये सेवा की, हम अपने को कर्ता मानते हैं और हम ये जानते हैं, चाहते हैं कि लोग सब रिकग्नाइज करें आसपास कि हाँ मैंने ये किया। भरत जी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, ये असली प्रेम के लक्षण है, अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता, इसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, कोई भौतिक परिस्थिति बाधा नहीं डाल सकती और हेतु की इसमें अपना कोई हेतु नहीं है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इसी तरह की सेवा से हमें संतुष्टि मिलेगी। हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में है नहीं, पूर्ण रूप से अगर संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हमारी सेवा अहेतु की अप्रतिहता नहीं है, इसमें कोई मिक्सचर है। और अगर हम अपने इस मिश्रित भक्ति के साथ संतुष्ट हैं तो बताया जाता है कि शीघ्र ही हमारा पतन हो जाता है। मिश्रित भक्ति की स्थिति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से हमारी मिक्स डिजायर्स मटीरियल डिजायर्स भक्ति के साथ रहती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि हम इसको फिल्टर कर सके, इससे अपने आप को मुक्त कर सके। क्योंकि ये जो इच्छा है ये भक्ति को, भक्ति में सेवा की भावना को सोख लेती है। जैसे नदी के तट पर पड़ी घास पूरे पानी को सोख लेती है, उसी ढंग से हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं सेवा की भावना को सूखा कर देती है। तो भरत महाराज ने अपने इस चरित्र से हमें सिखाया कि कैसे बहुत ही सरल पेड़ की छाल डाल के एक राज्य का संचालन करना, जटाएं धारण करके, कंदमूल खाकर, वन में रहकर, कल्पना भी नहीं की जा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भगवान राम के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए पेड़ की छाल डालना शुरू कर दें। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो दिल्ली में पेड़ की छाल मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई तो हमें डालनी नहीं आएगी, कोई टेलर ऐसा मिलेगा नहीं जो पेड़ की छाल से धोती बना दे, हमारा कुछ बना दे। तो इसके हमें उसका जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करना है। गुरुजन बताते हैं ना तो हमें सेवा के फल से आसक्त होना चाहिए ना ही सेवा से आसक्त होना चाहिए, हमें सेवा की भावना से आसक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सेवा के फल से आसक्त हूं या एक पर्टिकुलर सेवा से आसक्त हूं कि यही सेवा चाहिए मुझे, नहीं, हमें सेवा की भावना से आसक्त होने का प्रयास करना है। तो रामनवमी के अवसर पर हम ये प्रार्थना करें भगवान राम से और भरत जी से, लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से। हनुमान जी इतने भगवान के उत्साही सेवक हैं। ऐसा आत्मिका बुद्धि एके हा गुरु नंदना, ऐसा आत्मिका बुद्धि, हर परिस्थिति में सेवा ही करनी है, करना है बस। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, कौन सी औषधि चलेगी पता नहीं, चलो पूरा पर्वत उठा के चलो, करना है, इतना उत्साह। और हर परिस्थिति में वो भगवान की सेवा में रत रहते हैं। तो हम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से और भरत जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी ये सेवा की भावना आए। और आज के समाज में हम देखते हैं चरित्र का कोई महत्व ही नहीं है, ईमानदारी, चरित्र, श्रद्धा, इसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन बिना इसके कोई भी भक्त सही ढंग से भगवान से भक्ति नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जब तक हमारा चरित्र नहीं है, ईमानदारी नहीं है, इंटीग्रिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, कि जो हम सुनते हैं, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हमारा हृदय हमेशा खोखला रहेगा। और किसी और समाज में इसके चरित्र निर्माण के ऊपर आपके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, केवल बाहरी बाहरी बातें होती हैं। लेकिन कृष्णा भावानित आंदोलन में शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अवसर मिला है कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर सके, और शुद्ध कभी कर सकेंगे जब इन भगवान की लीलाओं को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इनकी शरण ग्रहण करेंगे और इनसे शिक्षाएं प्राप्त करके इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। एक दृष्टिकोण तो ये है, हम ये बोलें हाँ ये सब बातें बहुत ऊंची ऊंची हैं, ऊंची ऊंची बातें हैं, हमारे बस की नहीं है, ये तो केवल कथाओं में अच्छा लगता है सुनना, नहीं, इन पर कथाओं की हम शरण लें और जितना हम इसमें मनन करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। प्रभुपाद कल लेक्चर में बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन हमारे शुद्धिकरण के लिए है, और ये जो उत्सव आते हैं ये हमें शुद्धिकरण का बहुत सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम सब इन उत्सवों का पूरा लाभ उठाएं और भगवान राम से प्रार्थना करके अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करें। भगवान राम की, रामनवमी महामहोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, निताई गोड प्रेमानंदे। धन्यवाद। से कोई प्रश्न है, एक या दो प्रश्न है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि आपने बताया जब भगवान राम है उनके पिता का जब देहांत हुआ तो बाहर से विलाप कर रहे थे और अंदर ही अंदर बहुत आध्यात्मिक रूप से आनंदित थे, तो उनके आध्यात्मिक रूप से आनंदित होने का क्या आधार था, क्यों अंदर से इतना आध्यात्मिक आनंदित थे, बाहर से तो वो विलाप कर रहे हैं?
ये भावना समझना इतना आसान नहीं है ना। जैसे गोपियां भी भगवान की विरह में थी और विरह में विलाप कर रही हैं, लेकिन बताया जाता है कि जब कोई भक्त विरह में होता है या भगवान विरह में है तो उस भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान को हम बाहर नहीं निकाल सकते। गोपियां चाहती थी हम कृष्ण को भूल क्यों नहीं पा रहे, कृष्ण को भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, है ना। और जब विरह होता है तो विरह में वो भगवान को हर जगह देखती है, मिलन में तो भगवान को एक स्थान पर देखा, तो विरह में भगवान को हर जगह देख रहे हैं। तो जो विरह का जो आनंद है वो मिलन के आनंद से कई गुना ज्यादा बताया गया है। तो भगवान राम भी दशरथ के लिए विरह में है लेकिन दशरथ भगवान के अंतकरण में स्थित है और उसमें उनको ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि विरह में जो विरह हो रहा है, विरह होकर उनका स्मरण हो रहा है, तो उनका स्मरण ही मेरे को दुख का कारण है। यहां पर बहुत जगत में जब किसी रिश्तेदार का, निकट संबंधी का देहांत होता है तो क्या बोलता है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, भूल जाओगे। लेकिन जो असली प्रेमी होते हैं वो भूल ही नहीं पाते, कैसे भूल जाए, संबंध है, सम्यक रूपिन बंधन, ऐसा बंधन जो समय के साथ समाप्त नहीं होगा, जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होगा, वो असली संबंध है, कैसे भूल जाए। यहां तो भूल जाते हैं लेकिन वास्तविकता में कैसे भूले, प्रेम भूल कैसे सकते हैं, तो वो प्रेम और प्रगाढ़ होता जाता है विरह। ठीक है,
जैसे आपने बताया था कि इन एवरी कंडीशन वी ट्राई टू लव कृष्णा, तो इसमें प्रैक्टिकल क्या है, मतलब कि प्रॉब्लम्स आते जाएंगे लाइफ में, बट उसको हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट कि वी आर ट्राइंग टू लव कृष्णा, व्हाट इज प्रैक्टिकल?
बहुत सुंदर प्रश्न है उनका। भगवान राम अपनी लीला से यही संदेश दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करो। इनका प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं, बिजनेस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, और हम विचलित हो जाते हैं, और हम कैसे हर परिस्थिति में हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। नाइस, क्या उत्तर देना चाहेंगे कोई अपने अपने अनुभव से? प्रभु जी का उत्तर है ऑप्शन ही क्या है हमारे पास, तो हम प्रैक्टिकल इज नो ऑप्शन एक्चुअली, बात सही है बिल्कुल। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने जीवन में कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कहना आसान है करना मुश्किल है, तो लेट्स हैव सम फिक्स स्टैंडर्ड्स कि कुछ भी हो जाए मैं सुबह जल्दी उठकर मंगला आरती करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करूंगा, कुछ भी हो जाए प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ूंगा। हम यहां से शुरू कर सकते हैं, वी कैन टेक सम कमिटमेंट्स इन ऑल कंडीशंस, मिनिमम दिस आई विल डू, कुछ भी हो जाए 4 नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। इफ यू कैन स्टिक टू दिस, धर्म रक्षति रक्षता। प्रभुपाद अगर जो दीक्षा के समय हमने गुरु को वचन दिया है उस वचन को हर परिस्थिति में हम पूरा करते रहे तो बहुत तीव्र गति से हम प्रोग्रेस करेंगे, मिनिमम इतना तो करें ना। जो मौका मिले जाड़े देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु, जैसा मौका मिले जिस भी परिस्थिति में हम ये संदेश दूसरों को देने का प्रयास करें। प्रहलाद महाराज के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा था, प्रहलाद महाराज ने सोचा चलो कुछ समय के लिए लो प्रोफाइल रखते हैं ना, षंड और अमरक हैं और सारे के सारे दानव पुत्र हैं, कोई भी अपना सहपाठी ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण कॉन्शियस में जुड़ा हो, यूथ फोरम में आता हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, सारे के सारे विरोधी एलिमेंट्स हैं। थोड़ा लो प्रोफाइल रख लो, अपनी जान बचाओ, क्योंकि दोबारा फिर पिता को सामना करना है नहीं। उस परिस्थिति में भी रिसेस होती थी, छुट्टी होती थी, खेलते कूदते नहीं थे, प्रचार करते, मतलब दुखी हो सकते हैं, मैं छोटा सा बालक हूं, मासूम सा बालक हूं, मेरे पे क्यों इतना अत्याचार हो रहा है, नहीं। उस परिस्थिति में भी उन्होंने प्रचार किया, प्रभुपाद जी इतने वृद्ध अवस्था में गए प्रचार करते रहे, कोई फैसिलिटी नहीं थे, डुगडुगी लेकर चले गए, थॉमसन स्क्वायर पार्क में ना डुगडुगी थी ना, उनसे लेकर जाके प्रचार कर दिया हर परिस्थिति में। ऐसी जगह गए गोपाल अग्रवाल के यहां रुके, उसी फ्रिज में मांस पड़ा हुआ है, वहां उनको रहना पड़ रहा है। जिस घर में गए थे वो लोग मीट ईटर्स थे, और जिस फ्रिज का उपयोग प्रभुपाद करते थे उस फ्रिज का उपयोग वो भी करते थे, उसमें मीट रखते थे प्रभुपाद, फिर भी उस फ्रिज में रखे हुए वो भी चारा नहीं था, रख के भगवान को भोग लगाते थे और पाते थे हर परिस्थिति में।
मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन,
या व्हाट एवर इज देयर, व्हाट एवर बेस्ट वी कैन डू वी शुड डू, और अपने आपको बेचारा हतोत्साहित कभी ना पाए। लक्ष्मण जी राम को बताते हैं कि अगर आप उत्साह रहित हो गए तो कुछ नहीं हो सकता, दुखी मत होइए, उत्साहित मत होइए, ये हमें समझ में आता है। तो उसे क्या है, हम और भगवान से दूर हो जाएंगे, और जब ये क्रियाओं में लगे रहेंगे कुछ भी होता रहे, ध्यान पूर्वक 16 माला का जब भक्तों का संग ये करते रहें तो हमारा उत्साह भी बना रहता है और हमेशा अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहते हैं। ये परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, सुख दुख बदलता ही रहेगा, इसके चक्कर में हम जीवन के लक्ष्य को भूल ना जाए।
मुझे अपने दादा की वी शुड टेक ट्राई टू सी एवरीथिंग एज कृष्णा अरेंजमेंट, कि हमारे भगवान कुछ और उद्देश्य है हमारे लिए हायर, उसके लिए ये सब चीजें हो रही हमारी लाइफ में। तो भाई इसको कैसे समझें कि कृष्ण की अरेंजमेंट है कि हमारी फ्री विल का यूज है?
हमारी फ्री विल के कारण ही कृष्ण सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। जैसी हमारी फ्री विल होगी भगवान वैसे ही अरेंजमेंट्स करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज के लिए भगवान की इच्छा ही माने, हमने कोई गलती नहीं की, सब भगवान देख रहे हैं। जैसे तो हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों से उपदेश सुनते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, बेस्ट प्रयास करें, उसके बाद जो हो रहा है उसको भगवान की इच्छा लेकर स्वीकार करें। वी शुड डू आवर बेस्ट एंड लेट कृष्ण। ओके, लास्ट प्रश्न।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद भगवान श्री राम के इस अद्भुत चरित्र और उनके शिक्षाओं का व्याख्यान देने के लिए। मेरा प्रश्न है कि बद्ध अवस्था में सेवा के भाव, चूंकि भरत महाराज हमने शिक्षा से हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए भगवान की, तो अभी हम जबकि बद्ध अवस्था में हैं, विशेष करके मैं, तो कैसे उस सेवा भाव के बदले में जो दूसरे भक्तों का प्रोत्साहन या उनका जो सुंदर शब्द है जो मुझे और प्रोत्साहित करे, या अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा से रहित होकर के सेवा भाव को किया जाए?
हम आपको इसका थियोरेटिकल उत्तर दे सकते हैं, प्रैक्टिकल उत्तर हमारे पास नहीं है इसका, लेकिन जो बताया है, जो सुना है, उसमें यही बताया गया है कि सेवा की भावना विकसित करने का जो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं अपनी पुस्तक में, एक ही उपाय है कि हम सेवा करते रहें। हम ये ना सोचें कि हमारी भावना खराब है तो सेवा बंद कर दें, बट अपनी अशुद्ध भावना के प्रति हम जागरूक रहें और प्रार्थनाएं करके भक्तों से आशीर्वाद की इच्छा रखते हुए, याचना करते हुए सेवा को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करने का प्रयास करें, तो क्रमशः हमारी इस इच्छा को देखते हुए भगवान पर कृपा करेंगे और भावना विकसित होगी, और साथ में ध्यानपूर्वक जप जो बताए जाते हैं वो सब हम निश्चित रूप से आधार सब ध्यानपूर्वक जप और शास्त्रों का अध्ययन है। बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, रामनवमी महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंद।